मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज अप्रैल का छठवां दिन है, वर्ष है 2018 और दिन है शुक्रवार। और आज के इस afeis.com के लाइव मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, मुझे इस बात की सच पूछे तो इस सप्ताह भर कुछ अधिक ही खुशी रही कि आप लोगों ने लाइफ मैनेजमेंट विषय पर अब सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया है। देखिए, भाग लेना मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक आप एक ईमानदार और मेरे प्रिय श्रोता थे, आप सब सुनते थे और अपने अपने हिसाब से आप लोग उसका विश्लेषण करके अपने लिए उपयोगी पाते होंगे, बहुत सी चीजों को आप रिजेक्ट कर देते होंगे, बहुत सी चीजों से आप असहमत भी होते होंगे, वो आपका अधिकार है और उसका तो मैं पूरी तरह से सम्मान करता हूं। तो सक्रिय उस समय भी थे लेकिन वो सक्रियता एक तरफा थी, यानी कि आप अपने ही लेवल पर कर रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे अपने ही स्तर पर कर रहे थे। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि आपकी जो सक्रियता है वह अब आदान प्रदान के स्तर पर है। आदान प्रदान का मतलब है कि आप मुझे भी अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत करा रहे हैं, मुझे भी सजेशन दे रहे हैं और इस तरीके से जाने अनजाने चाहे अनचाहे आप मुझे भी समृद्ध कर रहे हैं। और यूं कह लीजिए कि लाइफ मैनेजमेंट का एक बहुत ही जो विस्तृत भाग है, जो कह लीजिए असीमित क्षेत्र है, उससे मेरा परिचय करा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आपकी इस सक्रिय भागीदारी ने मेरे अंदर न केवल नया उत्साह ही पैदा किया है बल्कि कहीं न कहीं एक नई दृष्टि भी उसने पैदा की है। और इसीलिए मित्रों, अब मैंने फैसला किया है कुछ समय तक की कोशिश की जाए कि इसे नए नए तरीके से पेश किया जाए। सप्ताह में 5 दिन लाइफ मैनेजमेंट मैं आपके सामने पेश करता हूं और वो भी तब यदि कोई गस्टेड हॉलीडे इस बीच में नहीं पड़ा तो कोशिश होगी कि आज अलग तरीके से, कल अलग तरीके से, परसों अलग तरीके से और फिर नो डाउट कि जब नेक्स्ट वीक शुरू होगा तो फिर वो सारी चीजें उसी पैटर्न पर ही रिपीट होंगी, क्योंकि आखिर आप कितने नए नए पैटर्न लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और आइए, आज मैं जिस पैटर्न को लेकर आपके सामने आया हूं उससे शुरुआत करता हूं। आज के मेरे इस पैटर्न में मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं एक कविता से। और ये जो कविता है ये नए किस्म की कविता है जिसे हिंदी साहित्य के स्टूडेंट जानते हैं, नई कविता कहा जाता है, यानी कि इसमें आपको छंद नहीं मिलेगा, उस तरह की लय नहीं मिलेगी, लेकिन कविता बहुत मजेदार है और बहुत प्रभावशाली है। तो आपको कहीं कहीं गद्य का एहसास हो सकता है, कहीं कहीं क्या मुझे लगता है कि गद्य का ही एहसास होगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, संवेदना बहुत गहरी है और वो संवेदना ही तो कविता को कविता बनाती है। अगर संवेदना नहीं है फिर चाहे कितने भी लय हो, छंद हो, वो कविता होकर के भी कविता नहीं रहती। तो मित्रों, सबसे पहले मैं कविता पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वह जो पहाड़ तुमने खड़ा किया था, वह जो पहाड़ तुमने खड़ा किया था, पत्थर के टुकड़ों को अपनी लगातार जख्मी होती पीठ पर ढोकर, वह जो पहाड़ तुमने खड़ा किया था, पत्थर के टुकड़ों को अपनी लगातार जख्मी होती पीठ पर ढोकर, आज भी वैसा ही खड़ा है, आज भी वैसा ही खड़ा है, कहीं भी कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है, कहीं भी कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है जैसे तुम छोड़ गए थे सालों पहले। मित्रों, यहां जो तुम शब्द है वह उपयोग में लाया गया है पिता के लिए, फादर के लिए, पापा के लिए, जैसे तुम छोड़ गए थे सालों पहले। फर्स्ट पार्ट को आप फिर से सुन लीजिए, इससे आप संवेदनाओं से जुड़ सकेंगे और अगर आप संवेदना से जुड़ गए तो मैं समझता हूं कि लाइफ मैनेजमेंट का काम पूरा हो गया। वह जो पहाड़ तुमने खड़ा किया था, यहां तुमने का मतलब अब पिता को ले लीजिए, राइट, अब पिता से जोड़ करके देखिए इसी इन्हीं लाइनों को। वह जो पहाड़ तुमने खड़ा किया था, पत्थर के टुकड़ों को अपनी लगातार जख्मी होती पीठ पर ढोकर, आज भी वैसा ही खड़ा है, कहीं भी कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है जैसे तुम छोड़ गए थे सालों पहले। अब देखिए, और फिर अंत में जब मैं, अब मैं है, आप हम सब हैं, और फिर अंत में जब मैं हार कर सो गया अपनी ही गोद में, ध्यान दीजिए दोस्तों, हार कर सो गया अपनी ही गोद में, यानी कि अब पिता की गोद नहीं है, कोई गोद नहीं है, दूसरी भी कोई गोद नहीं है। अब आपको अगर सोना भी है तो खुद की ही गोद में सोना है। और फिर अंत में जब मैं हार कर सो गया अपनी ही गोद में, पाया मैंने कि तुम उपस्थित हो, पाया मैंने कि तुम उपस्थित हो, तुम मतलब यहां फिर पिता, कि नहीं तुम मौजूद हो, अपनी संपूर्ण संवेदनाओं के साथ मेरे ही भीतर एक पहाड़ की तरह। और फिर अंत में जब मैं हार कर सो गया अपनी ही गोद में, पाया मैंने कि तुम उपस्थित हो, अपनी संपूर्ण संवेदनाओं के साथ मेरे ही भीतर एक पहाड़ की तरह। मित्रों, ये कविता है पिता के ऊपर, एक कविता है जिसे श्रवण गर्ग जी ने लिखा है। श्रवण गर्ग मूलतः बहुत अच्छे हिंदी के पत्रकार माने जाते हैं और दैनिक भास्कर के बहुत लंबे समय तक आप संपादक रहे हैं, और मुझे आपसे मिलने का मौका मिला है, बातचीत करने का अवसर भी मिला है, तो उनकी कविता की ये कुछ पंक्तियां मैंने आपके सामने रखी है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि कविता का मतलब भी है संवेदना, और गद्य का मतलब है, प्रोज का मतलब है, और विचार जो आपको दिमागी रूप से झकझोरते हैं, और कविता वह होती है जो आपको दिल से झकझोर कर रख देती है। और मुझे यकीन है कि कुछ न कुछ तो ऐसा आपके अंदर भी हुआ ही होगा, आपने भी अंदर से कुछ सुबुगाहट को तो महसूस किया ही होगा। देखिए मित्र, होता क्या है हमारे जीवन में, हम सब जैसे जैसे युवा होते जाते हैं, नो डाउट कि समय के साथ तो युवा चलता है। जो हमारे पिता हैं, माता हैं, हमारे दादा दादी हैं, यानी कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो समय के साथ कदम ताल मिलाकर नहीं चल पाते। ये उनकी अपनी कह लीजिए कि कमजोरी नहीं है, बल्कि यूं कह लीजिए कि अपनी एक संस्कृति ही है, अपनी एक रफ्तार ही है। और अब जबकि समय इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, भाग रहा है, अब और मुश्किल हो गया हम जैसे लोगों के लिए कि जो इसके साथ कदम ताल कर सके। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जो युवा पीढ़ी है वो अपने इन बुजुर्गों की बहुत ही तीखी आलोचक बन जाती है, बहुत ही तीव्र आलोचना करने लगती है, उन्हें रिजेक्ट करती है, इन्हें कुछ नहीं आता है, इन्हें कुछ नहीं मालूम है, ये सब गलत कर रहे हैं। नो डाउट, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब सही ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी भी अपनी कुछ भावनाएं हैं, कुछ विचार हैं जो अब जड़ हो चुकी हैं, लेकिन वो उनको समेटे हुए हैं, उन्हीं को आप पर लागू करना चाहते हैं, तो वहां भी वो गलत है। तो विवेक वहां दोनों तरह से दिखाई नहीं देता है। पूर्वज अपने को, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अपने को पूरी तरह से सही मानकर बैठे हुए हैं, और हमारे जो नई पीढ़ी है वो भी अपने को 100% सही मानकर बैठी हुई है, और इससे एक टकराव की स्थिति लगातार बनती जा रही है। उनमें सही पूछे तो एक विवेकपूर्ण संतुलित संवाद की ही स्थिति नहीं बन पा रही कि वो आपस में बैठकर सही तरीके से बातचीत तो कर सके, समस्याओं को समझ तो सके, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बन पाती है। होता क्या है कि पूरा का पूरा वक्त केवल फालतू की टकराहट में खत्म हो जाता है, वाद विवाद में खत्म हो जाता है, वितंडा में बीत जाता है। एक दिन इनकी मृत्यु होनी ही है, या तो मृत्यु हो चुकी है या हमारे जो बुजुर्ग हैं एक दिन हमें छोड़कर चले जाएंगे, और जब छोड़कर चले जाएंगे तब हमें पहली बार पता लगेगा कि जिस स्थान में वो बैठते थे, जिन स्थानों को वो भर कर रखते थे, अब वो कितना सुन्न सपाटा हो गया है, वो भाएं भाएं कर रहा है। और तब सही मायने में हमें उनकी अपने अंदर उपस्थिति मालूम पड़ती है, अपने अंदर उपस्थिति इस रूप में फ्रेंड्स कि हम अब जो बहुत सी बातें करते हैं, बहुत से जो विचार हमारे आते हैं, बहुत से हम जो फैसले करते हैं, पता लगा कि ये भी कहीं ना कहीं उसी तरह के विचार और हमारे फैसले हैं जिस तरीके के मेरे पिता किया करते थे। तब फिर मैं पाता हूं कि अरे फिर मेरे अंदर भी बदला क्या है, मतलब मेरे पिता तो पहाड़ की तरह ही मेरे अंदर मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं। और सच पूछिए तो इससे कहीं ना कहीं खुशी भी होती है, लेकिन एक तरह का अफसोस भी कि जब वे थे उस वक्त को हमने गंवा दिया। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह कि हम मान कर चलें, अगर सच में हम विवेकशील बनना चाहते हैं कि अभी जो कुछ भी घटनाएं आपके चारों तरफ घट रही हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, मान लीजिए, मान कर चलिए कि ये सब आपका निर्माण कर रही हैं। इन सब चीजों को आप एक पर्टिकुलर उम्र के बाद अपने अंदर मौजूद पाएंगे। इसीलिए घटनाएं चाहे जो भी हों उनके प्रति आप थोड़ा सा सकारात्मक रुख रखिए। नकारात्मक घटनाएं भी है तो कोई बात नहीं, उनके प्रति भी आप रुख तो कम से कम सकारात्मक बना ही सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से आपका निर्माण होता है और आप कितने एक बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली और विवेकशील व्यक्तित्व के रूप में उभरते चले जाते हैं। मित्रों, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आज शुक्रवार है, दो दिनों के बाद ही अब आप सबसे मुलाकात हो सकेगी और मैं चाहूंगा कि आप सब मुझे भी अपने अपने राय से, अपने अपने सजेशंस से मुझे समृद्ध करते जाएं। इससे मैं लाइफ मैनेजमेंट को आपके और भी अधिक अनुकूल बनाने का रास्ता पा सकूंगा। और मित्रों, अब इसे यहीं समाप्त करना चाहूंगा। आप सबको दो दिन की शुभकामनाएं देते हुए विदा चाहता हूं। नमस्कार।